जमानों की उमंग बाब नंबर 35। थम जा। ये सरगुजश खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में अहम मुकाम रखती है। गलील की झील के किनारे यीशु ने पहली तमसील बयान की थी। उसने एक जानी पहचानी मिसाल के जरिए बयान किया कि उसकी बादशाही किस नौयत की होगी। उस बीज बोने वाले की तमसील में फरमाया कि बीज बोने वाला मैं हूं, और अपनी बादशाही को राई के दाने और खमीर से तशबीह दी। अखीर वक्त में रासबाजों और नारास्तों को अलहदा अलहदा करने की तमसील अच्छे और कड़वे दाने और मछलियां पकड़ने वाले जाल से दी। इसी तरह बेशकीमत सच्चाई को छुपे खजाने और कीमती मोती की तमसील देकर बयान किया। फिर अच्छे मुख्तार और खादिम के बारे में अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो किस तरह उसके अच्छे नुमाइंदे बन सकते हैं। सारा दिन वो सिखाता और उनको शिफा देता रहा। शाम होने पर भी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। वो हर रोज उनकी खिदमत में बहुत ही मसरूफ दिन गुजारता, हत्ता कि उसके पास खाना खाने और आराम करने का बमुश्किल वक्त होता था। उसके हासिद और नुक्ता चैन फकी फरीसी हर वक्त उसके पीछे लगे रहते थे, और जब उनको मौका मिलता उसे और उसकी तालीम की भरपूर मुखालफत करते। बस उन तमाम बातों से बचने के लिए उसने चाहा कि झील के पार तन्हाई में आराम फरमाए। झील गिनिसरत का मशरकी किनारा गैर आबाद न था, बल्कि कोई कस्बा यहां और कोई वहां आबाद था, मगर मगरबी किनारे की निस्बत इसे गैर आबाद ही समझिए। यहां बुतपरस्त कौमें यहूदियों की आबादी से कहीं ज्यादा थीं। इसी वजह से उनका गलील के साथ बहुत ही कम वास्ता था। यहीं उसने आराम करना चाहा और अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि उसके साथ चलें। भीड़ को रुख्सत करने के बाद शागिर्दों ने उसको जल्दी से कुश्ती में बिठाया और चल पड़े, मगर उन्हें तन्हा नहीं जाना था। वहां और भी मछलियां पकड़ने वाली कश्तियां किनारे लगी खड़ी थीं, और जो लोग यीशु की पैरवी कर रहे थे वो उनमें बैठ गए, और देखते ही देखते वो आदमियों से भर गईं, क्योंकि वो मजीद यीशु को देखने और उससे सुनने के मुश्ताक थे। आखिरकार यीशु भीड़ के दबाव से आजाद हुआ। सख्त मुशक्कत और भूख प्यास से मांदा होकर वो कश्ती में लेट गया। उसे फौरन नींद आ गई। ये शाम बड़ी सुहानी और पुरसुकून थी। झील पर खुशगवार आसमान छाया हुआ था, मगर देखते ही देखते आसमान पर काली घटाओं ने कब्जा जमा लिया। घन गरज के साथ बड़ी भयानक आंधी शुरू हो गई, जो पहाड़ियों से टकराती हुई मशरकी किनारे पर तबाही मचाने लगी, और आन की आन में उसने झील में तुंदु तेज तलातुम बरपा कर दिया। सूरज गुरूब हो चुका था और लैली शब ने मुतलातिम समंदर पर डेरा जमा लिया। लहरें साहिलों से टकराकर कश्तियों पर हमलावर हुईं। ऐसे मालूम होता था कि पुल भर में मर लिया बाजेगी। माहीगीरों ने बड़ा जितन किया, मगर वो कश्तियों को डूबने से बचाने में बेबस दिखाई दे रहे थे। उनकी कश्तियों में पानी भर चुका था और वो सोचते थे कि ये झकड़ हमें डबो कर रहेगा। अपने आप को
बचाने की कोशिश में वो भूल ही गए कि यीशु भी कश्ती में है। कुछ देर की तगोदो के बाद मालूम हो गया कि मौत उनके सामने खड़ी है, और अच्छी बात ये कि उन्हें याद पड़ा कि किसके कहने पर वो समंदर पार कर रहे हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ यीशु में थी, लिहाजा अपनी मायूसी और परेशानी की हालत में वो पुकार उठे, आका आका, मगर तारीकी के बायस वो उसे देखने से कासिर थे। आंधी के झकर में उनकी आवाजें गुम होकर रह गईं, इसलिए उन्हें कोई जवाब ना मिला। खौफ और शक ने उन्हें घेर लिया। वो सोचने लगे कि क्या यीशु ने उन्हें छोड़ दिया है? क्या ये वही है जिसने इबलीस, मौत और हर तरह की बीमारी पर फतह पाई है? क्या अब वो अपने शागिर्दों की मदद करने के लिए बेबस है? क्या उसे खबर नहीं कि हम सख्त मुसीबत में हैं? उन्होंने फिर पुकारा, मगर जोरदार आंधी और तलातुम के शोर के अलावा उन्हें कुछ सुनाई ना दिया। उनकी कश्ती पेशतर ही डूब रही थी। पल भर में उनकी कब्रें समंदर में बनने को थीं। पानी की भूखी लहरें उन्हें हड़प करने को मुंह खोले खड़ी थीं। अचानक बिजली की चमक ने जुल्मत को चीर कर रख दिया, और उन्होंने उस रोशनी में यीशु को इत्मीनान की गहरी नींद सोते पाया। खूनी तलातुम उसकी नींद में हरगिज मखमल न हुआ। चुनाचे उन्होंने मायूसी और हैरानी के आलम में पूछा, आका, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? वो इस बात पर ताज्जुब करते थे कि वो क्यों कर इतनी मीठी नींद सो सकता है जबकि हम खतरे और मौत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी चीखों से यस्सु बेदार हो गया और बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका परसकून चेहरा देखा और उसके चेहरे पर खुद इनकारी, ईसार पसंदी, मोहब्बत और कमाल का रहम पाया। उन तमाम वस्फ को देखकर उनके दिल उसकी तरफ मायल हुए और उससे इल्तिजा करने लगे कि खुदावंद हमको बचा, क्योंकि हम तो बर्बाद हुए जाते हैं। जब भी कोई रूह खुदावंद से मदद के लिए पुकारती है, वो उसे नजरअंदाज नहीं करता। जब शागिर्द चुपू चलाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, यस्सु जाग उठा और शागिर्दों के दरमियान आ खड़ा हुआ। झकड़ के चलने से लहरें उछल उछल कर उनके ऊपर से गुजरी जाती थीं। बिजली की चमक में वो उसका चेहरा देख सकते थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर बफिरिए समंदर को हुक्म दिया, थम जा। तलातुम मौकूफ हो गया, मौजें पुरअमन हो गईं। बादल फील बेमहार की तरह इधर उधर परागंदा हो गए। नीले आसमान पर सितारे टिमटमाने लगे। हिचकोले खाती हुई कश्ती पुरसुकून पानी पर तैरने लगी। फिर यस्सु शागिर्दों की तरफ मुड़ा और मगमूम होकर कहने लगा, ऐ कम एतकादु, डरते क्यों हो? का अभी तक तुम में ईमान नहीं?
शागिर्दों पर खौफ छा गया, हत्ता कि पतरस भी बयान न कर सका कि उसके दिल पर क्या गुजरी है। दूसरी कश्तियों का भी यही हाल हुआ जो यस्सु की कश्ती के साथ हो ली थीं, मगर उन सब ने मोजज़ा देखा। जब सुकून हो गया तो सबके दिलों से खौफ जाता रहा। फिर वो आपस में ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? मत्ती 27:8। जब यस्सु को उठाया गया, वो पुरसुकून था। उसके कलाम में न उसके चेहरे और दिल में खौफ का शायबा था। वो कादर मुतलिक जमीन और आसमान के खालिक की हैसियत से लेना था, बल्कि उस कुदरत को उसने एक तरफ रख दिया था। उसका कहना है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यूहन्ना 30:5। वो खुदा में मुकम्मल भरोसा रखता था और खुदावन की कुदरत में ही उसने समंदर को साकिन किया। जैसे यसू अपने बाप में मुकम्मल एतमाद करके आराम पाता था, हमें भी अपने नजात दहिंदा में मुकम्मल भरोसा रखकर आराम और सुकून हासिल करना चाहिए। अगर शागिर्द यसू में मुकम्मल भरोसा रखते तो परेशान न होते। खतरे के वक्त उनकी बेएतकादी जाहिर हो गई। अपनी कोशिश में वो यसू को भूल गए। और ये उस वक्त होता है जब हम अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमें अब किसी और की क्या जरूरत। ताहम शागिर्दों ने नाकाम होने के बाद यसू को मदद के लिए पुकारा। बसा औकात हमारा तजुर्बा भी शागिर्दों के तजुर्बा से मुख्तलिफ नहीं होता। जब आजमाइशों के झकड़ चलते, बिजलियां कड़कती और लहरें हमारे सरों से गुजरती हैं, उस वक्त हम अकेले ही उन तूफानों के मुकाबले आ जाते हैं और उस वक्त तक तगोदो करते रहते हैं जब तक हमारी उम्मीद जाती नहीं रहती और हमें मालूम हो जाता है कि अब हम तबाही के किनारे पहुंच गए हैं। तब हमें यसु याद आता है। अब भी अगर उसे पुकारें गए तो बेसूद ना होगा। बेशक वो हमारी कम एतकादी और खुद एतमादी पर हमें बड़े रंज से झड़केगा, मगर वो हमें जरूरी मदद फराहम करने से गुरेज नहीं करेगा। खा हम समंदर में हों या खुश्की पर, अगर नजात दहिंदा हमारे दिल में है तो खौफ की हरगिज जरूरत नहीं। नजात दहिंदा में जिंदा ईमान जिंदगी के तूफान को मौकूफ करके हमें खतरे से बचा लेगा।
तूफान को साकिन करने के मोजज़े में एक और रूहानी सबक है। लेकिन शरीर तो समुंदर की मानिंद है जो हमेशा मोजज़न और बेकरार है, जिसका पानी कीच और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं, यसाया 20:57-21। गुनाह ने हमारा चैन बर्बाद कर दिया है और हमारी खुदी खुदा के ताबा होने से गुरेज करती है, इसलिए हमें सुकून नसीब नहीं। कोई शख्स भी दिल की नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकता। जैसे तलातुम के सामने शागिर्द बेबस थे, इसी तरह दिल के हाथों हम भी बेबस हैं। मगर याद रहे कि जिसने गलील की मुतलातिम लहरों को पुरसुकून कर दिया, वही हर रूह को चैन बख्शेगा। इसमें कलाम नहीं कि तूफान किस कदर तुंदो तेज और खतरनाक है। जो कोई भी मदद के लिए पुकारेगा, खुदावन जरूर उसे रिहाई बख्शेगा।
उसका फजल जो रूह को खुदावंद खुदा से मिला देता है, इंसान के जज्बात के तलातुम को पुरसुकून कर सकता है, फिर उसकी मोहब्बत में दिल आराम पाता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं, तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं, यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद पर पहुंचा देता है। जबूर 29 बरशत 107 33। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदावंद के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला सुलह रखें, रोमियो 1:5। और सदाकत का अंजाम सुलह होगा, और सदाकत का फल अबदी आराम और इत्मीनान होगा, यसाया 17:32। सुबह सवेरे नजात दहिंदा और उसके साथी किनारे लगे, तुलुए आफताब से जमीन और समुंदर बुकाए नूर बन गया, मगर जल्द ही उनकी आंखें एक ऐसे मंजर से दो चार हुईं, शनंदरी तलातुम से भी भयानक था। कब्रों में से दो दीवाने उनकी तरफ इस तरह दौड़े आए जैसे उनको चीर फाड़ देंगे। जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया था वो टूट चुकी थीं, मगर अभी तक टूटी हुई हाथों और पांव के साथ लटक रही थीं। जगह जगह उनके बदन से खून बह रहा था, क्योंकि उन्होंने तेज पत्थरों से खुद को जख्मी कर रखा था। उनके उलझे हुए बालों को देखकर घबराहट होती थी, उनकी आंखें गैज़ो गज़ब से आग बरसा रही थीं। इंसान से ज्यादा वो बेचारे हैवान दिखाई देते थे, क्योंकि अरसा से वो इबलीस के कब्जा में थे। शागिर्द और उनके साथी खौफ से तितर बितर हो गए, मगर उन्हें जल्द मालूम हो गया कि यीशु उनके साथ नहीं है। बस वो उसे देखने के लिए वापस लौटे। उन्होंने देखा कि वो वहीं खड़ा है जहां वो उसे छोड़कर भागे थे, वो जिसने आंधी और झकड़ को मौकूफ कर दिया था, जिसने इबलीस पर फतह पाई थी। वो उन आसीब जदा पागलों से भी डर कर ना भागा। जब वो शख्स जिनमें बदरूहें थीं उस पर गुस्से से दांत पीस रहे थे, तो उनके मुंह से झाग बह रहा था और वो यीशु की तरफ बढ़ते चले जाते थे। यीशु ने अपना वो हाथ ऊपर उठाया जिससे उसने समुंदर को साकिन किया था, तो वो आदमी वहीं रुक गए और मजीद उसके नजदीक आने की जसारत ना की। गो वो गुस्से से भरे थे, मगर उसके सामने बेबस थे। फिर उसने बड़े इख्तियार से बदरूहों को हुक्म दिया कि उनमें से निकल जाओ। उसका कलाम उनके तारीक अजहान में सरायत कर गया। वो महसूस करने लगे कि वो जिसकी हुजूरी में है, वो उन्हें इबलीस के चिंगल से रिहाई दे सकता है। वो यीशु के कदमों में सजदे के लिए गिर गए, लेकिन जब उन्होंने रहम के लिए लपकुशाई की तो इबलीस उनके जरिए कलाम करके कहने लगा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा, हमारा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। उन शख्सों को इस्तेमाल करके बदरूहों ने यीशु से मन्नत की कि हमें उन सरहदों से बाहर ना भेज। वहां से कुछ दूर पहाड़ पर सूरों का गोल चर रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, हमें सूरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ उनमें दाखिल हो जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गईं और सारा गोल कुड़ाड़े पर से झपट कर झील में डूब मरा। इस दौरान जिनमें बदरूहें थीं उनमें अजीबो गरीब तब्दीली आ गई। उनके जहन रोशन हो गए, आंखें जहानत से चमकने लगीं, उनके करख चेहरे अचानक शफकत से मामूर हो गए, नीज अपनी रिहाई पर खुदा की तमजीद करने लगे। ये तमाम माजरा सूरो चराने वालों ने पहाड़ी की चोटी से देखा। वो भागे ताकि जो माजरा हुआ था उसकी खबर सूरों के मालिकों को और दूसरे लोगों को दें। खौफ और हैरत से मामूर लोग यीशु की मिलने आए। ये दोनों शख्स जिनमें बदरूहें थीं इलाके के लिए मुसलसल खतरा बने हुए थे। जहां ये रहते थे वहां से कोई गुजरने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि उस रास्ता से गुजरने वाले हर मुसाफिर पर बदरूहें हमलावर हो जाती थीं। मगर अब लोगों ने देखा कि ये दोनों शख्स कपड़े पहने और पूरे होशो हवास में यीशु के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुन रहे हैं, और जिसने उन्हें शिफा बख्शी थी उसकी तमजीद में रुतबे लिलिसान हैं। मगर वो लोग जिनके सूरों डूब कर मर गए थे, वो उस शानदार और हैरतअंगेज मंजर को देखकर हरगिज शादा न हुए। उनके नज़दीक सूरों का नुकसान उन दो शख्सों को निजात दिलाने से कहीं ज्यादा था। ये लोग रूहानी चीजों की निस्बत मादी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। खुदावंद यसु मसीह खुदगर्जी के इस जादू को तोड़ना चाहता था, मगर आरजी दुनियावी नुकसान ने उनकी आंखें अंधी कर रखी थीं, इसलिए वो निजात दहिंदा के रहम को देख नहीं सकते थे। मसीह यसु की माफौकुल फितरत कुव्वत ने लोगों की औहाम परस्ती और खौफ को जन्म दिया। उन्होंने सोचा, अगर उस अजनबी को मजीद यहां रहने की इजाजत दी तो बहुत मुमकिन है कि हम पर इससे भी बड़ी मुसीबतें नाजिल हों। उन्होंने माली और मादी नुकसान का तखमीना लगाया जो सूरों के डूबने से उन्हें पहुंचा था। इसलिए उन्होंने मिलकर तहिया किया कि उस अजनबी को दरखास्त करें कि वो हमारी सरहदों से निकल जाए। शागिर्दों के अलावा दूसरे लोग जो यसु के साथ झील के दूसरे किनारे गए थे, उन्होंने झील में आने वाले तूफान और उसे साकिन करने के तमाम वाकया को तफसील से उन बुत परस्त लोगों को बताया, मगर उनकी बातों का उन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि सब जमा होकर उसके पास आए और मिन्नत करने लगे कि हमारे पास से चला जा। यसु ने उनकी दरख्वास्त तस्लीम कर ली और कश्ती पर चढ़कर पार चला गया। ग्रामीणियों के लिए यसु की मोहब्बत, रहम और कुदरत का जिंदा सबूत था। उनके पास तंदुरुस्त सलामत दो नौजवान अपने पूरे होशोहवास में बैठे हुए थे, जो अरसा से बदरूहों की कैद में थे, मगर उन्हें इक्तसादी नुकसान मंजूर ना था। दुनियावी और मादी लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी। बदी वजह उन्होंने आसमानी बख्शिश को, जो उनके पास आ चुकी थी, ठुकरा दिया। शायद ग्रासिनियों की तरह हमने कभी भी यसु को घर से ना निकाला हो, मगर हम में बहुतेरे ऐसे हैं जो खुदा का कलाम मानने से डरते हैं, मुबादा उन्हें मादी नुकसान हो। असल में हम यसु को कहते हैं कि हमारे हाथ से चला जा। यूं हम उसके फजल और रूहुल कुदुस को अपने हाथ से दूर कर देते हैं। मगर वो दो अशखास जो शीफ पा गए थे, उनकी ख्वाहिशात और महसूसात बिल्कुल मुतफर्रिक थीं। वो तो हमेशा अपने निजात दहिंदा के साथ रहने के मुतमन्नी थे। वो यसु की कुर्बत में इबलीस से महफूज थे, जिसने उनकी जवानी और इंसानियत को बर्बाद करके रख दिया था। जब यसु कश्ती में दाखिल होने लगा तो वो उसके मजीद करीब हो गए और घुटने टेक कर ये इल्तिजा करने लगे कि हमें अपने साथ रहने दे ताकि उससे कलाम सुने। मगर खुदावन ने उनको हुक्म दिया कि अपने घरों को लूट जाओ और लोगों से कलाम बयान करो कि खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ये काम था जो उन्हें करना था, यानी बुतपरस्तों में काकर उन बरकात का जिक्र करना जो उन्होंने यसु से पाई थीं। मगर उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम था कि यसु से अलहदा हों। बुतपरस्तों के साथ सोबत रखने से उन्हें कई मुश्किलात का सामना हो सकता था। चूंकि वो मुआशरे से काफ अरसा कटे रहे थे, इसलिए ऐसा मालूम होता था कि जो काम यसु मसीह ने उन्हें उनके फराइज से आगाह किया, वो उसे बिला चूनोचरा मानने के लिए तैयार पाए गए। उन्होंने न सिर्फ अपने घर और पड़ोस में यसु की मनादी की, बल्कि सारे दिक्पल्स में उन्होंने यसु की बचाने वाली कुदरत की मनादी की और अपनी जिंदा गवाही दी कि उसने किस इबलीस के चिंगल से उन्हें रिहाई दी है। और अगर वो महज अपने फायदा की खातिर यसु की हुजूरी में ही रहते और दूसरों को निजात की खुशखबरी ना सुनाते, तो उन नेमतों से महरूम रहते जो यसु मसीह उनको उनकी खिदमत के इवज देना चाहता था। निजात की खुशखबरी फैलाने से ही हम निजात दहिंदा के करीब आते हैं। इबलीस से खलासी पाने वाले ये दो अशखास पहले मिशनरी थे, जिनको यसु मसीह ने दिक्पल्स के इलाका में इंजील की मनादी के लिए भेजा। इन अशखास ने सिर्फ चंद लम्हात के लिए यसु से तालीम पाई थी। यसु से उन्होंने कभी एक वाज तक न सुना था। वो शागिर्दों की तरह लोगों को बेहतर अंदाज में हिदायत नहीं दे सकते थे, मगर उन्हें ये जाती तजुर्बा था कि यसु ही मसीह है। जो कुछ उन्होंने दूसरों को बता सकते थे, जो कुछ उन्होंने देखा और सुना, वही कुछ उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। और यसु मसीह की जैसी कुदरत उन्होंने महसूस की, उसी की उन्होंने मनादी की। वो सब लोग जिनके दिल फजल से मुतासिर हुए हैं यही कुछ कर सकते हैं जो इन दो अशखास ने किया। प्यारा यूहन्ना खुदा के रूह से लिखता है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। यूहन्ना 1:1-3।
यीशु मसीह के गवाह होते हुए जो कुछ हमें मालूम है बताएं,
जो कुछ हमने सुना देखा या महसूस किया है उसकी मनादी करें, और जिस तरह वो माजी में हमारी रहनुमाई करता रहा है उसकी गवाही दें। हम बता सकते हैं कि किस तरह हमने उसके वादों को आजमाया और उन्हें सच पाया। जो कुछ हम यीशु के फजल के बारे जानते हैं उसकी गवाही दे सकते हैं। इसी गवाही के लिए हमारा आका हमें बुलाता है। इसी की कमी के बायस दुनिया बर्बाद हो रही है। बेशक ग्रसेनियों के बाशिंदों ने यीशु को कबूल ना किया, इसके बावजूद यीशु ने उन्हें उस अंधेरे में ना रहने दिया जिसका उन्होंने इंतखाब किया था। जब उन्होंने यीशु को अपने इलाका से निकल जाने के लिए कहा, उस वक्त उन्होंने यीशु का कलाम ना सुना था। वो पूरी तरह गाफिल और बेसमझ थे। इसलिए यीशु ने उनके पास दोबारा नूर भेजा, और नूर भी उनके जरिया भेजा जिनकी सुनने से वो इनकार ना कर सकते थे। सूरों की तबाही करने से इबलीस चाहता था कि लोग यीशु से दूर चले जाएं और इस इलाके में इंजील की मनादी रुक जाए, मगर इस वाकया की वजह से तमाम इलाका में यीशु की खबर पहुंच गई। शायद किसी और वाकया से तमाम लोगों की तवज्जो यीशु की तरफ मबदूल ना होती। बेशक यीशु वहां से चला गया, मगर उस इलाका के जिन लोगों को उसने शिफा दी थी उसी इलाके से हजारों हजार निजात का पैगाम सुनने के लिए यीशु के गिर्द गिर्द जमा हो गए। इन दो अशखास की इत्तफाकी मुलाकात में शागिर्दों के लिए एक बड़ा सबक पिनहा था। इस सारे वाकया से पता चलता है कि शैतान नस्ल इंसानी को कितना जलील करना चाहता है, और खुदावन यीशु मसीह का मिशन ये है कि इबलीस की कुदरत से हर इंसान को रिहाई दिलाए। वो बदबख्त अशखास जिन डेरा बसीरा कब्रों में था, उन पर बदरूहों ने कब्जा कर रखा था। वो हर बुरी ख्वाहिश और जज्बात के ताबे हो चुके थे। ये दो अशखास उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो इबलीस को अपने ऊपर कब्जा करने देते हैं। इबलीस की हत्तल वुस कोशिश है कि इंसान के जहनो दिमाग को अपने कब्जा में लेकर बदी, दहशतगर्दी और जरायम के लिए इस्तेमाल करे। इबलीस बदन को कमजोर, शऊर को तारीक और रूह को तहकीर करता है। जब कभी भी इंसान खुदा की दावत को रद्द कर देते हैं तो हकीकत में वो खुद को इबलीस के कब्जा में दे देते हैं। घरों में, कारोबार में, हत्ता के कलीसिया में भी आज हजारों लोग यही कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी धरती पर दहशतगर्दी और जरायम बढ़ते जा रहे हैं। बदअखलाकी और मौत ने इंसानी आबादी में डेरा डाल रखा है। शैतान इंसान के सामने अपनी बड़ी बड़ी आजमाइशें रखकर उसे बदतरीन बदी की तरफ माइल कर रहा है, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इंसान मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। उससे बचने का वाहिद रास्ता यीशु मसीह की कुर्बत ही है। इबलीस इंसान का जानी दुश्मन है, जबकि यीशु मसीह इंसान का दोस्त और निजात दहिंदा है। उसका रूह इंसान में आला सीरत पैदा कर सकता है। यीशु की रूह इंसान को खुदा के जलाल के लिए उस्तवार कर सकती है,
क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। 2 तिमोथियुस 7:1।
उसने हमें बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह का जलाल हासिल करें। उसने हमें बुलाया है ताकि हम उसके बेटे के हम हमशल हों। 2 थसलनीकियों 4:2। रोमियों 29:8। वो रूहें जिन्हें इबलीस ने जिल्लत के गढ़े में गिरा दिया है अभी भी यीशु की कुदरत से तब्दील होकर रास्तबाजी की पयंबर बन सकती हैं। उन्हें खुदा का बेटा ये मुनादी करने के लिए भेज सकता है कि उनके लिए खुदा ने कितने बड़े काम किए हैं।